नमस्कार दोस्तों, कुछ नया सुने विद सजीव सारथी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ है मेरे को होस्ट सुजॉय चटर्जी। सुजॉय और हम जो हैं इस प्रोग्राम को होस्ट कर रहे हैं। पिछले दो एपिसोड्स में हम लोगों ने रोमांटिक गीतों की बात करी थी। आज हम बात कर रहे हैं, एक ट्रिब्यूट दे रहे हैं एक बहुत ही कमाल की, बहुत ही लेजेंडरी सिंगर को, जिन्होंने अभी जिनको रिसेंटली हम लोगों ने खोया है। 4 फरवरी 2023 को तमिलनाडु में 77 ईयर्स की एज में उनकी मृत्यु हुई है। एंड वी आर यू नो मतलब एक एक कह सकते हैं कि संगीत का एक युग एक तरीके से उनके साथ चला गया है। वाणी जयराम की हम बात कर रहे हैं। वाणी जयराम का जो कैरियर है लगभग 50 साल से भी ऊपर का रहा है और 10,000 से भी अधिक गीत उन्होंने गाए हैं। पद्म भूषण से उनको सम्मानित किया गया है और उन्होंने 19 भाषाओं में, यानी कि जिसमें हिंदी है, तेलुगु है, कन्नड़ है, मलयालम है, मराठी है, बहुत सारे जितने भी लैंग्वेज है 19 भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं। उनको 3 जो हैं नेशनल अवार्ड मिल चुके हैं बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का। वाणी जी की शुरुआत जो है वसंत देसाई के साथ हुई थी गुड्डी फिल्म में, 1971 की बात है। ऋषिकेश मुखर्जी की इस फिल्म में जया भादुरी ने गुड्डी का रोल किया था और वो गाना शायद आप सबको याद होगा, बोले रे पपीहरा, जो एक कल्ट सॉन्ग बना आगे चलकर। उसके अलावा भी वाणी जयराम ने मदन मोहन, नौशाद, पंचम, कल्याण जी, आनंद जी, LP, OP नैयर, जयदेव, बहुत सारे कंपोजर्स के साथ उन्होंने गाए। पंडित रविशंकर के साथ उन्होंने मीरा फिल्म के लिए सभी गीत गाए, जिसके लिए उनको बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड भी मिला। मीरा के लिए पहले चॉइस ऑफकोर्स लता मंगेशकर थी, बट व्हेन वो अवेलेबल नहीं थी और उन्होंने टर्न डाउन किया, तब सारे गीत जो हैं वाणी जयराम ने गाए और बहुत खूबसूरती के साथ गाए। तो हमारे साथ सुजॉय भी हैं। सुजॉय, आप हम मिलकर आज वाणी जयराम जी को याद कर रहे हैं। हमारे साथ रेणुका भी हैं, रेणुका परमेश्वरन। रेणुका जो हैं वो तमिलनाडु से बिलोंग करती हैं बेसिकली, और जो साउथ में वाणी जी का जो रोल रहा है उसके बारे में रेणु हमें बताएंगी। तो पहले मैं सुजॉय की तरफ आता हूँ। सुजॉय, आप बताएं वाणी जयराम जी के बारे में किस तरह से आप उनको ट्रिब्यूट देना चाहेंगे।
जी नमस्कार सजीव जी और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। वाणी जयराम जी एक ऐसी गायिका रही हैं, उनके बारे में सबसे खास बात यह है कि वो भले ही वो तमिलनाडु में उनका जन्म हुआ और वहीं पे पली बढ़ी और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में उन्होंने तालीम ली, लेकिन बचपन से ही उनका मन हिंदी फिल्म संगीत की ओर ही झुका था। तो उनका एक इंटरव्यू मैंने पढ़ा पिछले दिनों, जिसमें उन्होंने कहा कि ये मतलब आश्चर्य की बात है कि बिल्कुल तमिलनाडु से होते हुए भी एक दूसरी गायिका भी है शारदा जी, उनका भी उनके साथ भी यही हुआ कि भले ही वो साउथ से हैं लेकिन उनका शुरू से ही रुझान हिंदी फिल्मी गीतों की तरफ रहा। और वाणी जयराम जी की जो माँ थी वो इसके खिलाफ थी, वो चाहती थी कि वाणी जी कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की गायिका बने और इसलिए उन्हें पसंद नहीं था कि उनका हिंदी फिल्मी गाने सुनना। और उन दिनों रेडियो पर सारे कार्यक्रमों को छोड़कर वो रेडियो सिलोन पर वाणी जी जो गीतमाला, जो अमीन सायनी बिना का गीतमाला प्रोग्राम है वो सुना करती थी और सुनते हुए अपनी माँ को बताती थी कि देखना एक दिन मेरे ये गाने भी इस प्रोग्राम में बजेंगे। तो उस समय तो उनकी माँ मतलब टाल देती थी ये कहकर कि जब शादी हो जाएगी तो अपने पति के परमिशन से ये सब करना, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ पे जब तक हमारे इधर घर में हो तो आपको क्लासिकल म्यूजिक ही सीखना है। तो वो बात बाद में उस समय तो आई गई हो गई लेकिन बाद में ये बात सच हुई और गुड्डी फिल्म का जो गाना है वो जा पहुंचा, जो बिना का गीतमाला के वार्षिक कार्यक्रम में जा पहुंचा और इस तरह से उनका वो सपना पूरा हुआ। और हिंदी में वो कैसे आई, तो उनकी जब शादी हुई जयराम जी के साथ तो वो एक सितारिस्ट थे और मतलब लकीली दोनों के जो वेवलेंथ है वाणी जी के और जयराम जी के वो बहुत मैच होते थे, तो इसलिए वाणी जी को कोई दिक्कत नहीं हुई। जो उनका जो सपना था हिंदी फिल्मी गीतों, हिंदी फिल्म जगत में आना, वो उनका पूरा हुआ और दोनों ने डिसाइड किया कि वे अब बम्बई शिफ्ट हो जाएंगे। तो बम्बई शिफ्ट हुए और वहां पे एक उस्ताद से वाणी जी ने जो हिंदुस्तानी संगीत की तालीम ली, हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की तालीम लेनी भी शुरू कर दी क्योंकि हिंदी फिल्मों में गाना था तो हिंदुस्तानी अंग तो उसमें उनमें लाना ही था। और खुशकिस्मती से जो जो वसंत देसाई जी के जो उनके जो उस्ताद थे वो वसंत देसाई जी के भी दोस्त हैं। तो जब गुड्डी फिल्म प्लान हो रहा था तो गुड्डी फिल्म की कहानी ऐसी थी कि वो एक रियल लाइफ स्टोरी जैसी थी कि एक रियल लाइफ में एक मिडिल क्लास लड़की जो धर्मेंद्र एक्टर से शादी करना चाहती है, तो इस तरह की कहानी थी। तो इसलिए इसमें गुड्डी के लिए अगर लता जी या आशा जी से अगर गाने गवाया जाए तो फिर वो फिल्मी फिल्मी हो जाएगा, वो नहीं, रियल जैसा नहीं लगेगा कि एक मिडिल क्लास की एक आम घर की लड़की गा रही है। तो जिस तरह से जया भादुड़ी एक नई नए फेस को वे लेकर आए, उसी तरह से उनके गुड्डी के लिए एक आवाज, नई आवाज की जरूरत थी, ताकि बिल्कुल लगे कि ये एक नॉन फिल्मी आवाज है, बिल्कुल रियल लाइफ कैरेक्टर है। तो तब अब अच्छा, अब एक और बात यह है कि गुड्डी में फिर गाने कैसे होंगे, एक मिडिल क्लास घर की लड़की अगर गाने गा रही है तो मिडिल क्लास फैमिली में क्या होगा कि लड़कियों को या तो क्लासिकल म्यूजिक सिखाया जाएगा या फिर भजन टाइप के गाने सिखाए जाएंगे, फिल्मी गाना तो सिखाया नहीं जाएगा। तो इसलिए इस फिल्म के गाने भी वैसे ही हैं। तो ऐसे में वसंत देसाई जी को एक ऐसी गायिका की तलाश थी जो क्लासिकल म्यूजिक और भजन इस तरह के गाने बहुत अच्छे से गाए, और जो आवाज बिल्कुल अलग तरह की आवाज हो, जो लता जी या आशा जी जैसी आवाज ना हो। तो इन सारे जो क्राइटेरिया थे, इसमें जब जब वाणी जी के जो गुरु थे वो जब उनका नाम सुझाया वसंत जी को, तो उनका ऑडिशन लिया गया और बिल्कुल वैसी ही आवाज थी जैसा वसंत जी चाहते थे। तो इस तरह से उनका सिलेक्शन गुड्डी के लिए हुआ, और बाकी तो हिस्ट्री है कि गुड्डी के दोनों गाने, हमको मन की शक्ति देना और बोले रे पपिहरा, ये सुपर डुपर हिट हुआ। और इस फिल्म में एक और मजेदार बात ये हुई कि उनका एक तीसरा गाना भी रिकॉर्ड हुआ था वाणी जी का, जो एक भजन था, और जो अगर आपको फिल्म याद है तो फिल्म के बिल्कुल अंत में क्लाइमेक्स से ठीक पहले एक मधुमती का गाना लिया गया है, आजारे परदेसी, वही गाना एज लाइक ओरिजिनल फॉर्मेट में ही लिया गया है। लेकिन शुरू में इस सिचुएशन पर ये गाना नहीं था, इस गाने के जगह पे एक ओरिजिनल गाना ही था वाणी जयराम का गाया हुआ। लेकिन ऋषिकेश मुखर्जी को लगा कि फिल्म के क्लाइमेक्स के रूप में वो गाना थोड़ा सा मतलब ऑफ बीट हो रहा है, तो उन्हें मतलब गाना तो अनडाउटेडली बहुत अच्छा था, गुलजार साहब का लिखा हुआ था, एक भजन था, एक और भजन ही था वो, लेकिन क्लाइमेक्स के साथ वो मेल नहीं खा रहा था, थोड़ा सा बोरिंग जैसा हो रहा था, अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो थोड़ा सा बोरिंग लग रहा था उन्हें। तो इसलिए उन्होंने रातों रात उसको रिप्लेस किया, और तब और समय ही नहीं बचा था कि कोई नया गाना बन सके, सब कुछ शेड्यूल हो चुका था। तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो मधुमती का ही गाना लेंगे, और आजारे परदेसी उस गाने को उसी तरह से कर दिया गया, और फिल्म में एक डायलॉग मतलब उसमें डाल दिया गया कि जिसमें गुड्डी से वहां बैठे लोग अनुरोध करते हैं कि कोई फिल्म का गाना गाना, कोई दूसरा कोई गाना मत गाना, नहीं तो लोग बोर हो जाएंगे, तो फिल्म का ही गाना गाना। और इस तरह से इसका बैकग्राउंड क्रिएट किया गया ताकि वो कोई पुरानी फिल्म का गाना ही गाए। तो इस तरह से गुड्डी के ये तीन गाने इसमें हुए।
सुजय,
तो
इसमें
ये
जो आप बता रहे हो, जो गाना दूसरा जो बता रहे हो, जो एक रिकॉर्ड हुआ था लेकिन फिल्म में नहीं रखा गया, क्या वो ऑडियो में अवेलेबल है गाना वो?
जी बिल्कुल ऑडियो में अवेलेबल है, और आप यूट्यूब पर भी सुन सकते हैं। अभी इसके बोल मुझे एकदम से याद नहीं आ रहे, कुछ दिनों पहले मैंने देखा था, लेकिन ये गाना अवेलेबल है, गुड्डी का जो गाना फिल्म में नहीं है, जिसके जगह पे वो आजारे परदेसी गीत को रखा गया है फिल्म में।
दैट इज वेरी इन्फॉर्मेटिव सुजय, वाओ।
जी। तो इसके बाद क्या हुआ, गुड्डीज में उनको उनका तो नाम काफी हो गया चारों तरफ, और लेकिन बात वही थी कि जो लता जी की आवाज, आशा जी की आवाज इतनी ब्राइट थी कि सारे प्रोड्यूसर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स सब लोग चाहते थे कि वही गाए। तो दूसरी जो गायिकाएं थी उनके जैसा वाणी जयराम जी के साथ भी वही हुआ कि उनको बी और सी ग्रेड वाली फिल्मों में गाने मिलते गए, हालांकि बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स नहीं उन्हें गवाए, जैसे कि मदन मोहन, फिर नौशाद, आगे चलकर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, लेकिन फिल्में छोटी बजट की होती थी जिस वजह से उनके गाने उतने कामयाब नहीं हुए, लोगों का ध्यान नहीं गया। जैसे एक गाना एक मुट्ठी आसमान फिल्म का था किशोर कुमार के साथ, प्यार कभी कम ना करना सनम, ये गाना काफी हिट हुआ था लेकिन फिल्म चली नहीं, तो उतना लोगों का ध्यान नहीं गया। इसी तरह से मुकेश के साथ भी उनका गाया हुआ एक गाना था ले चलो अब कहीं ले चलो, मान जाइए फिल्म का गाना नक्शलायल पुरी और जयदेव के संगीत में। तो इस तरह से उन्हें उस तरह का मतलब पोजीशन नहीं मिल पाया। और 1979 में जब मीरा फिल्म बन रही थी तो उन्हीं दिनों लता जी ने हृदयनाथ मंगेशकर के साथ एक एल्बम किया था मीरा भजनों का, इसलिए लता जी ने कहा कि ये सही नहीं होगा, अभी मैंने अपने भाई के लिए गाया है, अगर मैं दोबारा फिल्म के लिए गाऊंगी तो लोग कंपैरिजन करेंगे, और उस समय क्योंकि हृदयनाथ मंगेशकर उतना नाम नहीं कमा पाए थे हिंदी जगत में, तो इसलिए लता जी को लगा कि फिर कंपैरिजन आएगा तो उनका करियर शुरू होने से पहले ही उसमें मतलब लोग इसमें सवाल उठाएंगे, तो इसलिए उन्होंने मना कर दिया। तो आशा जी भी नहीं गाई, और उसके बाद तीसरे नंबर पे वाणी जयराम जी का नाम गुलजार साहब ने प्रपोज किया। तो इसी से हम अनुमान लगा सकते हैं कि देखिए लता जी नहीं गा पा रही हैं, तो उसके बाद वाणी जयराम जी का ही नाम आ रहा है लिस्ट में। तो इससे हम पता, क्योंकि उस समय सुमन कल्याणपुर दूसरे भी गायिकाएं थी, दूसरी गायिकाओं से भी गाने गवाए जा सकते थे। उषा तिमोथी, मीनू पुरुषोत्तम सभी सभी थे, एस जानकी भी थी, लेकिन वाणी जी का ही नाम सजेस्ट मतलब फाइनलाइज हुआ। और इस तरह से जो मीरा के जो गाने हैं वो वाणी जी ने गाया, और इसीलिए उनका नाम मीरा बाई के साथ भी जुड़ गया। तो कहीं मैंने पढ़ा था कि उनको ऐसे इसीलिए उनका उनके नाम के साथ मीरा लगा, जब मीरा फिल्म के गीतों को गाने के बाद में। तो उसके बाद वाणी जी ने शायद ये सोचा होगा कि अगर बॉलीवुड में गाएं तो उन्हें बी और बी ग्रेड फिल्मों के, लो बजट फिल्मों के गाने ही गाने को मिलेंगे, क्योंकि वहां पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए उन्होंने मतलब रीजनल जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां वहीं पे मतलब अपनी जो पहचान है बनाने के बारे में सोचा, और उनका ये डिसीजन बिल्कुल सही था। साउथ में, सिर्फ साउथ में ही नहीं, उन्होंने उड़िया फिल्मों में भी बहुत से गाने गाए हैं, बांग्ला में भी गाए हैं, और अधिकतर जो दक्षिण के जो चार भाषाएं हैं उस उनमें और मराठी में उनके गाने सबसे ज्यादा आए हैं, और वो भी एकदम चोटी की गायिका के रूप में उभर कर सामने आई। तो बस इतना ही कहना था सजीव जी मुझे वाणी जी के बारे में।
बिल्कुल सुझाए। और उनकी जो दक्षिण में जो उनकी पारी रही वो तो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही कमाल की रही, उसके बारे में हमें
जी
बताएंगे रेणुका। लेकिन इससे पहले मुझे लगता है कि एक बार हम बोले रे पपीहरा थोड़ा सा सुन लेते हैं, क्या कहते हैं सुझाए?
जी जी बिल्कुल।
व्हाट अ ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड व्हाट अ वॉइस, कमाल।
जी
सो आई वेलकम रेणुका परमेश्वरन। रेणुका, आर यू देयर? वी वॉन्ट टू नो मोर अबाउट वाणी जी साउथ इंडियन मूवीज सॉन्ग्स, सो वुड यू
यस
लाइक टू एड समथिंग? यस रेणु, प्लीज।
गुड इवनिंग, हाउ आर यू? एंड वाणी जी इज अ ग्रेट सिंगर एंड शी हैज संग सो मेनी सॉन्ग्स इन तमिलनाडु एंड हर कैरियर स्टार्टेड आई थिंक 1971 एंड फॉर 5 decades शी सैंग सो मेनी सॉन्ग्स एंड शी हैज संग फॉर एम एस विश्वनाथन, इलैयाराजा एंड सो मेनी म्यूजिक डायरेक्टर्स एंड शी डिड म्यूजिक बी ए म्यूजिक ऑल्सो इन चेन्नई ओनली शी स्टडीड देयर एंड शी बिकेम अ प्लेबैक सिंगर. I will sing one of her hit song in Tamil. It is Malligai and Mannan Mayangam. Malligai en Mannan Mayangum, Malligai en Mannan Mayangum, மலரல்லவோ என் நேரமும் உன்னாசை போல் பெண் பாவை நான் பூச்சூடிக் கொள்ளவோ மல்லிகை என் மன்னன் மயங்கும் பொன்னான மலரல்லவோ. And I'm basically a classical singer, but I used to inspire a lot about Vani Amma because her range is very high and no one can reach that, you know, that very high pitch songs. And she sings so well, and we are missing her. And so many songs, and Nadamenum Koyilile, like that, she has sung so many nice songs. And Ezhu Swarangalukkul, Ethane Paadal, a lot of Tamil songs.
यस रेणुका, ऑफ कोर्स या जो रेंज है वी कांट यू नो इट्स नॉट इजी टू सिंग फॉर फॉर दैट
यस
काइंड ऑफ रेंज। यस,
या
तो
इट्स
वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग एल्स अबाउट द ग्रेट वाणी जी?
That's what she's a great singer, and her range is, that's what I said. And she sang so many songs. She got, and the sad thing is, she has got that award, and within a week, she passed away. So that was very sad. And her most, even though she was born in Chennai, and but she has sang so many songs in Bollywood songs also. So, and what to say.
ओके, थैंक यू सो मच रेनू. एंड यस, ऑफ कोर्स सुजय, जैसे हमने बताया कि वाणी जयराम जी ने ना सिर्फ हिंदी में बल्कि सभी बहुत सारी 19 भाषाओं में गाना जो है बिल्कुल आसान नहीं है, और लगातार
जी
50 सालों तक वो गाती रही. जैसे भी रेनू ने बताया कि उनको अवार्ड मिला था और उसके बस तुरंत बाद ही उनकी डेथ हुई, तो यानी कि लास्ट मोमेंट तक वो सक्रिय थी. और मैंने एक इंटरव्यू में ये भी पढ़ा था कि उन्होंने ये बात कही थी कि मैं बहुत ज़्यादा गाने नहीं गाना चाहती हूँ, लेकिन जो गाऊँ मैं चाहती हूँ कि वो गाने याद रखे जाएँ. तो वो जो
जी
तमन्ना थी, ऑफकोर्स उनकी वो तो पूरी हुई है. मुझे लगता है कि आज 50 साल के बाद भी हम लोग जब बोले रे पपिहरा सुनते हैं, या हमको मन की शक्ति देना सुनते हैं, या और भी
जी
जो गाने उन्होंने गाए हैं, जब उनको सुनते हैं और उनको याद करते हैं, तो मतलब लगता है कि यार एक कैसे कोई इंसान जो है इतने सालों तक, एक इतने दशकों
जी
तक जो है वो अपनी आवाज के माध्यम से लोगों तक
जी
अपनी.
इसका जो कारण है वो यही है कि वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में निपुण थी, और जैसे कि रेणु जी ने बताया कि उनका रेंज बहुत है, तो उनके इंटरव्यू में, उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो जब छोटी थी तब से ही वो कॉन्सर्ट्स किया करती थी. उस समय तो उनकी मम्मी उनके पीछे पड़ी हुई थी कि वो कर्नाटक शास्त्रीय संगीत सीखें. तो शायद वही रीजन होगी कि क्लासिकल म्यूजिक में जो उन्होंने इतने अच्छे से मतलब ट्रेनिंग ली, वही कारण है कि उनका जो ये जो लॉन्ग लास्टिंग कैरियर है वो क्लासिकल म्यूजिक की वजह से ही है. तो ये एक बात फिर से वही बात कर रही कि जो जो नए जो सिंगर्स हैं उनको भी क्लासिकल म्यूजिक ही सबसे पहले सीखना चाहिए, क्योंकि वही जो है वही लंबी रेस का घोड़ा वही होगा जो क्लासिकल म्यूजिक में ट्रेंड होगा. वरना आजकल जो जिस तरह से रियलिटी शोज में बहुत शॉर्टकट सक्सेस के पीछे जिन लोग भाग रहे हैं, तो उनके लिए ये एक लेसन है कि अच्छे से सीख के ही फिर मैदान में उतरे.
बिल्कुल सही कहा आपने सुजय, बहुत सही कहा आपने. तो वाणी जी
जी
जो है अब हमारे बीच बेशक नहीं है, लेकिन उनकी आवाज़ जो है मुझे लगता है कि जब तक कयामत होगी तब तक लोगों के साथ
जी
रहेगी, हम सबको सुकून देती रहेगी. तो वाणी जी को
जी
हम उनकी आत्मा की शांति के लिए हम प्रार्थना करते हैं, और उनके गाए हुए गीतों को हम लोग सुनते हुए उनको याद करते हैं. बहुत शुक्रिया सुजॉय, बहुत शुक्रिया रेनू, थैंक यू सो मच रेनू. एंड ये ट्रिब्यूट एपिसोड था हमारा वाणी जयराम के लिए. कुछ नया सुने में हम लोग इसी तरह से म्यूजिक से रिलेटेड कंटेंट लेकर आपके लिए साथ फिर से हाजिर होंगे. सुजय, थैंक यू सो मच फॉर को होस्टिंग विथ मी दिस एपिसोड.
धन्यवाद
ओके,
सजीव जी.
थैंक यू रेनू, थैंक यू सुजय, बाय बाय, मिलते हैं फिर.
बाय.